ओम शांति। हम सभी को एक विचित्र सवाल आपसे पूछते हैं, आपको कितने पिता हैं? आपको कितने पिता हैं? एक, दो, तीन? ये राज आज आपको समझना है। एक है हमारे शरीर के पिता, लौकिक पिता, जो हमें शारीरिक जन्म देते हैं, उसको लौकिक पिता कहते हैं। हरेक के अपने अपने पिता हैं। दूसरे हैं पारलौकिक परम पिता, शिव बाबा। हम सभी आत्माओं का एक ही पारलौकिक अविनाशी पिता है, शिव बाबा। और आज अभी हम अपने तीसरे अलौकिक पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में समझेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है, 3 मिनट थॉट कंट्रोल करेंगे, शिव बाबा में मन लगाएंगे। हमारे तीसरे पिता है, हम सर्व मनुष्य आत्माओं के आदि पिता, प्रजा पिता। प्रजा मीन्स मनुष्य आत्माओं का पिता, ब्रह्मा बाबा। भक्ति में भी हम कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन करते हैं। अब सृष्टि का सर्जन माना कोई सूर्य चांद सितारे बनाने की बात नहीं है, कोई पृथ्वी बनाने की बात नहीं है, कोई मानव शरीर घड़ना, एक एक में प्राण डालना, वो बात नहीं है। ये तो आज सुबह भी हमने समझा कि सूर्य चांद सितारे पृथ्वी पांचों ही तत्व अनादि अविनाशी हैं, उनके सर्जन की बात नहीं है। मानव शरीर मां के गर्भ से बनता है, इसलिए मानव शरीर घड़ने की बात भी नहीं है। आत्मा अनादि अविनाशी है और अपने कर्म हिसाब अनुसार वो उस शरीर में प्रवेश करते हैं। कोई नए मकान, दुकान, रास्ते बनाने से नई दुनिया नहीं बन जाती है। तो भगवान ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन किया, इसका अर्थ ये है जो आज चक्र के लेसन में भी समझा कि कैसे परमात्मा आकर कलियुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में बदलते हैं और विश्व परिवर्तन के लिए व्यक्ति का परिवर्तन करते हैं। तो स्वयं निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा कलियुग के अंत संगम युग में जब सृष्टि पर आते हैं तो वे खुद तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए हमारी तरह मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वो तो अशरीरी है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन करने के लिए उसे कोई मानव तन में प्रवेश करना होता है, इसलिए हम कहते हैं अवतरित हुए। आज भी शिवालय जब बनाते हैं तो शिवालय की दीवारें बनाते हैं और ऊपर से शिवलिंग उतारते हैं मंदिर में और फिर ऊपर का गुंबज बनाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से शिवलिंग ले जाकर स्थापित नहीं करते हैं, ऊपर से उतारते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव मां के गर्भ द्वार से जन्म नहीं लेते हैं पर काया प्रवेश करते हैं। तो कलियुग के अंत सभी मनुष्य आत्माओं में से परमात्मा को जो योग्य लगता है और जिस साधारण मानव तन में वो दिव्य प्रवेश करते हैं, उस निमित्त माध्यम को ही प्रजा पिता ब्रह्मा कहा जाता है। भक्ति में हम चतुर्मुखी ब्रह्मा, त्रिमुखी ब्रह्मा, सहस्त्र भुजाधारी बताते हैं, ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है। कोई तीन मुख वाला, चार मुख वाला, हजार हाथ वाला कोई देवता नहीं हो सकता है। वो सिंबॉलिक चित्र बनाए जाते हैं, जैसे रावण के 10 शीश बताते हैं, तो कोई 10 शीश वाला मनुष्य नहीं था, पर नर और नारी के 5-5 विकारों के प्रतीक 10 शीश रावण के दिखाए जाते हैं। कलियुगी विकारी गृहस्थ जीवन का प्रतीक रावण के 10 शीश बताए जाते हैं। तो कोई 3 मुख वाला, 1000 भुजा वाला कोई देवता की बात नहीं है, वो सिंबल है। वास्तव में ब्रह्मा वो है जिसके तन में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, जिनके द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं, उसे प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। जो प्रजापिता ब्रह्मा का पूर्व जीवन का ये फोटो है, उसका लौकिक नाम दादा लेखराज था, सिंधी थे। 1876 में कृपलानी परिवार में उनका शारीरिक जन्म हुआ। एक साधारण लेकिन धार्मिक परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके लौकिक पिताजी प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, लेकिन दादा लेखराज अपने आप में विशेष थे। अपनी विलक्षण बुद्धि से उन्होंने ज्वेलरी का बिजनेस किया और बहुत बड़े ज्वेलर बने। उस जमाने में भी वे बहुत प्रसिद्ध नामी ग्रामी ज्वेलर थे। वे भक्त थे, श्री नारायण के उपासक थे, गीता का नित्य पाठ करते थे। इवन वे ट्रेन में ट्रैवल करते थे, उस दिन भी गीता का पाठ छोड़ते नहीं थे। बहुत धनी थे उस जमाने में और उतने ही दानी भी थे। राजा महाराजाओं से, क्योंकि ज्वेलरी का बिजनेस था तो राजा महाराजाओं से उनके संबंध थे। इवन अंग्रेजों के वायसरॉय आदि के परिवार से भी उनके संबंध थे और उन घरानों की ज्वेलरी बना कर देते थे। बाबा उन राजा महाराजाओं को भी, क्योंकि ये बाबा के बड़े बड़े ग्राहक थे, बाबा उसको पार्टी में बुलाते थे। लेकिन बाबा का जीवन सिंधी होते हुए, वे वैष्णव कुल के थे, उनका आहार खाना पीना बहुत शुद्ध और सात्विक था। वो अपनी पार्टी में राजा महाराजाओं को भी सात्विक भोजन देते थे, कोई शराब मांसाहार उसमें नहीं होता था। राजा लोग कहते थे कि लखीराज बाबू आपकी पार्टी फीकी रहे, तो बाबा उसको कहते थे कि मैं तो आपको हीरा देता हूं, आप तो कागज के नोट देते हैं, उसके कारण मैं अपनी धारणा थोड़ी तोड़ूंगा। माना इतने अपने नियमों में पक्के थे। उदयपुर के महाराजा, नेपाल के महाराजा से उनके घर के संबंध थे। बाबा को भगवान से बहुत प्यार था, लगन थी, सत्य पाने की खोज थी, इसलिए बाबा गुरु करते थे। एक के बाद एक के बाद एक ऐसे 12 गुरु बाबा ने किए थे, क्योंकि उनको सत्य क्या है, परमात्मा कौन है, कैसे हम उसमें मन लगाएं, आत्मा की शुद्धि करें, प्रभु मिलन मनाएं, ये जानने की जिज्ञासा थी। गुरु के प्रति बाबा की बहुत श्रद्धा और समर्पण मयता रहती थी। वो कहते थे गुरु का बुलावा काल का बुलावा, कभी उसको अमान्य नहीं करते। एक बार उनके घर में अपनी बेटी के जन्मदिन का प्रसंग था, पर उनके गुरु का अचानक टेलीग्राम आया, उसको बुलाया, वो उसी समय गए। माना गुरु की आज्ञा सिर माथे रखते थे। वे एक बार बॉम्बे गए थे बबुलनाथ मंदिर के पास अपने मित्र के घर। उस समय उनको अचानक विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। बाबा दिन प्रतिदिन और भगवान से प्यार करने लगे। बाबा इतने धार्मिक संस्कार वाले थे, अपनी बच्ची की शादी, जबकि इतने धनाढ्य ज्वेलर होते हुए एक योगी राज से शादी कराई थी। अपनी दूसरी बेटी की शादी में उनको चांदी का मंदिर बना कर दिया। माना सात्विक संस्कार अपने बच्चों को भी देते थे। तो बाबा जब एक बार, क्योंकि बाबा सिंध हैदराबाद में रहते थे लेकिन ज्वेलरी का बिजनेस हैदराबाद में और कोलकाता में भी था। कलकत्ता में भी बाबा की लखराज बाबू के नाम से प्रसिद्ध ज्वेलरी की दुकान थी। तो जब वो हैदराबाद से कलकत्ता जा रहे थे, बीच में वाराणसी में अपने मित्र के घर बाबा रुके और वहां उनको जब सुबह प्रभात के समय उस बंगले के बगीचे में एकांत में परमात्मा याद में बैठे थे तो उनको अचानक साक्षात्कार हुआ और उस परम ज्योति पुंज परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का उनको साक्षात्कार हुआ। और फिर एक दूसरा साक्षात्कार हुआ जिसमें आने वाले दिनों में, निकट भविष्य में कलियुगी दुनिया का कैसे महाविनाश होगा, भगवान ने उनको वो साक्षात्कार कराया और उसमें उनको बताया कि निकट भविष्य में कलियुगी दुनिया का महाविनाश तीन रीति से होगा। एक प्राकृतिक आपदाओं से होलसेल मौत होंगी, दूसरा ग्रह युद्ध होंगे, खून की नदियां बहेगी, लोग आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होंगे। ये 1936 की बात है। और तीसरा बताया कि कैसे अणु शस्त्रों के द्वारा, एटम बॉम्ब्स के द्वारा आसमान से आग की वर्षा होंगी और क्षण में लोग खत्म हो जाएंगे। आप सबको पता होगा कि प्रथम अणु बॉम्ब 1945 में बना और उसका, उस बेबी बॉम्ब का पहला उपयोग जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर उसे फेंका गया। बाबा को ये साक्षात्कार उस समय हुआ जब संसार में कोई बॉम्ब्स नहीं बने थे। 1936 में ये उनको साक्षात्कार हुआ और बस इससे बाबा का मन एकदम उपराम हो गया। कि ये कौन है, ये मुझे क्या दिखा रहे हैं, क्या होने वाला है। बाबा और गहरे चिंतन में चले गए और बाबा का लौकिक व्यापार से मन उठ गया। बाबा सीधा कलकत्ता गए और अपने पार्टनर से कहा कि अब मैं बिजनेस करना नहीं चाहता हूं, आप हिसाब कर लीजिए और जो मुझे देना हो वो हिसाब दे दीजिए। वो पार्टनर जानता था कि बाबा के कारण ही इतना सफल बिजनेस है। उसने बहुत समझाया पर बाबा को उस दिव्य साक्षात्कार से प्रभु में ऐसा विश्वास हो गया कि वो अब समेट लेना चाहते थे। तो बाबा ने कहा कि नहीं, बाबा ने कहा कि आप जो भी मुझे देंगे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अब इसमें से निकलना चाहता। अपना हिस्सा लेकर बाबा वापस हैदराबाद आए। वहां उनके लौकिक चाचा मूलचंद जी अपने आखिरी सांसों पर थे। बाबा उनके पास गए, फिर साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, श्रीनाथ जी का, श्री कृष्ण जी का, श्री नारायण का। फिर से बाबा को साक्षात्कार हुआ और ये संदेश मिला कि अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम्हें भी ऐसा बनना है। फिर बाबा ने साक्षात्कार में और एक बात देखी कि कैसे ऊपर से सितारे धरती पर आते थे और आते ही दैवी राजकुमार राजकुमारी बन जाते थे और उनको इशारा मिला कि तुमको ऐसी दुनिया स्थापन करने के लिए निमित्त बनना है। बाबा बहुत गहरे चिंतन में चले गए कि मैं कैसे ये नई दुनिया बनाऊंगा, कौन मुझे कह रहा है, किस प्रकार से मैं कर पाऊंगा। तो बाबा ने अपने ही भवन में, बाबा के बहुत बड़े बड़े बंगले थे, उस जमाने में बाबा लाखोंपति थे, तो उनके एक बड़े भवन में बाबा ने रोज सत्संग करना शुरू किया। गीता पाठ पढ़ते थे, ओम की धुनी बुलाते थे और उस सत्संग में सिंध समाज से माताएं बहनें आने लगी। ओम की धुनी करते थे इसलिए लोगों ने ओम मंडली नाम दी। ओम मंडली में जाते हैं, साक्षात्कार होते हैं, बहुत दिव्य अनुभव होते थे, ऐसा एक वातावरण बन गया सिंध में। और घर घर से माताएं बहनें, कुछ भाई कुछ परिवार आने लगे। बाबा को स्पष्टता नहीं था कि ये कौन मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है। उस सत्संग में माताएं कुमारियां आने लगी। उसमें एक कन्या बहुत प्रभावशाली थी, चित्र में जो बीच में दिखाई है, जिसका नाम ओम राधे था। उसके प्रभावी व्यक्तित्व को देखकर बाबा ने सत्संग की जिम्मेवारी उनको दे दी और बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए और वहां प्रकृति की गोद में हिमालय की वादियों में बाबा और साधना करने लगे, चिंतन करने लगे और रोज नए नए ज्ञान का चिंतन लिखकर भेजते थे और मम्मा उस सत्संग में सबको रोज सुनाती थी, समझाती थी। बाबा को भगवान के तरफ से इशारा मिल गया कि अब तुम्हें अपना सर्वस्व विश्व कल्याण के कार्य में समर्पित करना है और तुम्हें माताओं और कन्याओं को आगे रखना है। तो बाबा ने 1937 अक्टूबर में मम्मा और ये जो फोटो आप देख रहे हैं दादी प्रकाशमणि जी यहां स्टेज पर, जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, एक हमारी शांतामणि दादी जी थी जो इस शांतिवन कैंपस की डायरेक्टर थी, उसकी बहन, और एक मिठू दादी थे पटियाला के। ये पांच बहनों के नाम बाबा ने ट्रस्ट बनाया और पूरी चल अचल संपत्ति उन पांचों ही बहनों के नाम की। भगवान के आदेश अनुसार, चूंकि उस समय सारा पुरुष प्रधान समाज था, माताएं बहने चार दीवारों के अंदर थी, समाज में एक इम्बैलेंस था क्योंकि स्त्री को गौण समझा गया, पुरुष प्रधान समाज बन गया। तो परमात्मा ने आदेश दिया कि फिर से माताओं और कन्याओं को निमित्त बनाना है। विद्या की देवी सरस्वती गाई जाती है, मां को जीवन में प्रथम शिक्षक कहा जाता है, भारत माता शक्ति अवतार गाया हुआ है, बच्चों को संस्कार चरित्र मां देती है, इसलिए फिर से माताओं बहनों के द्वारा तुम्हें कार्य कराना है। तो बाबा बैकबोन बन गए और माताओं बहनों को आगे किया। उस सत्संग में जो भी आते थे, मम्मा के नाम, ये मातेश्वरी जगदम्बा जिसको हम मम्मा कहते हैं, मां सरस्वती, उसके नाम लेटर लिखा के लाना होता था लौकिक परिवार से। इवन ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन समर्पण का पत्र मम्मा के नाम लिख के दिया था कि मैं अपना जीवन इस ओम मंडली में विश्व सेवा के लिए समर्पित करता हूं। आज भी वो पत्र है बाबा ने जो पहला लिख करके दिया। तो ये मैं इसलिए बता रही हूं कि आप सबको स्पष्ट रहे कि यहां ऐसा नहीं है जो चाहे सो भाग के आ जावे और रह जावे। अक्सर जब किसी के घर से उनकी कन्याएं या उनकी मां, पत्नी, बहन भाग जाते हैं तो लोग यहां ढूंढने आते कि यहां तो नहीं है आपके यहां, पर यहां ऐसा नहीं है कि जो आए सो रह जाए। हमें भी ऐसे नहीं रखते, हमारे मां बाप का सम्मति पत्र चाहिए और वे हमें देखते हैं, परखते हैं, योग्य हैं, फिर समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने शुरू से ये प्रथा रखी कि मम्मा के नाम समर्पण का और माता पिता की सम्मति का पत्र लेकर आना है, क्योंकि जिनको दिव्य अनुभव हुए, साक्षात्कार हुए, सत्संग से उनके संस्कार बदले, उनके आहार विहार शुद्ध बने, तो नेचुरली वो अपना जीवन समर्पण करना चाहते थे। और इस प्रकार पूरे सिंध में एक लहर फैल गई कि ओम मंडली में जाने से बहुत अच्छे जीवन बनते। और इस प्रकार सत्संग चला। लगभग शुरू में 350-400 माताओं बहनों ने और थोड़े भाई कुछ परिवार समर्पित हुए और सत्संग का कार्य शुरू हुआ। जब उस माताओं बहनों के, क्योंकि उस जमाने में सिंधी लोग काफी विदेशों में बिजनेस करने जाते थे, तो जब उनके पति लोग आए और इन सत्संग में आने वाली बहनों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया, अन्न शुद्धिर किया, अपना भगवान से उनकी लगन लगी, तो पवित्रता धारण की, तो कईयों के पतियों ने, कईयों के माँ बाप ने, कईयों के परिवार ने विरोध किया। और इस प्रकार कई प्रकार के विघ्न शुरू हुए। जिन माताओं बहनों को घर से छुट्टी थी, कई माताएं बच्चे सहित आई, बाबा ने उन छोटे बच्चों के लिए एक बोर्डिंग शुरू की, ओम निवास। बाबा की एक और बिल्डिंग थी, उसमें छोटे बच्चों का बोर्डिंग स्कूल शुरू किया। उसमें लौकिक विद्या के साथ या आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा भी दी जाने लगी। इसमें पंजाब से, हरियाणा से काफी भाई बहने आए हैं। पंजाब जोन हम उसको कहते हैं, उसमें 5 स्टेट आते। कई मेहमानों ने बोला कि स्वागत सत्र में, सौगात के समय आपने हरियाणा का नाम नहीं बोला, पर हम पंजाब जोन कहते हैं और पंजाब जोन में 5 स्टेट आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल, उत्तराखंड। इसलिए हम पंजाब जोन कहते हैं, पर नेचुरली आप लोगों को इस बात का ख्याल नहीं है, तो मेहमानों ने कहा। तो उस पंजाब जोन की, ये 5 स्टेट की जो हेड थी, मैं इसलिए बता रही हूं, चित्र में जो खड़े हैं वो दादी चंद्रमणि जी है, जिनका पूरा परिवार, वो भी बहुत धनाढ्य परिवार की थी, और ब्रह्मा बाबा पूरे परिवार सहित, चल अचल संपत्ति सहित समर्पित हुए। तो दादी चंद्रमणि जी के पिताजी भी पूरे परिवार और पूरी संपत्ति सहित इसमें समर्पित हुए। तो दादी चंद्रमणि जी इस हॉस्टल को संभालती थी, बच्चों को भी ये संस्कार दिए जाते थे। और एक तरफ लोगों का विरोध भी शुरू हो गया, क्योंकि जबरदस्ती अशुद्ध अन्न खिलाना, विषय वासना के लिए मजबूर करना, जो कन्याएं शादी करना नहीं चाहती थी, भगवान से जीवन जोड़ना चाहती थी, उनके माँ बाप ने उन पर सितम गुजारा, इस प्रकार के कई विघ्न शुरू हुए। आप जानते हैं कि सत्य के मार्ग पर अनेक विघ्न आते हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि सच की नाव हिलती है डुलती है पर डूबती नहीं है। बाबा ने 2 साल के बाद सिंध हैदराबाद से कराची में पूरा संगठन शिफ्ट किया। काफी वैर विरोध हुए, अखबारों में भी ग्लानी हुई, बहुत सितम भी गुजारे गए, पर इन माताओं बहनों का बहुत ही भगवान के प्रति सच्ची लगन और समर्पण की भावना थी। बाबा ने उन समर्पित बहनों का आत्मभान बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं वो जमाना था जब स्त्रियों को घर में बंद रखते थे, उनका स्वमान जगाने के लिए, चित्र में आप देखो एक्सरसाइज के समय बाबा ये ड्रेस पहनवाते थे ताकि स्त्रीपन का भान खत्म हो और मैं आत्मा शक्ति हूं ये सत्य भान उसके अंदर आए। बाबा कराची में समुद्र किनारे क्लिफ्टन पर सबको घुमाने ले जाते थे, वहां साइलेंस में बिठाते थे, हरेक योग के अच्छे अच्छे अनुभव करते थे और इस प्रकार हैदराबाद में 2 वर्ष और 12 साल कराची में कुल 14 वर्षों तक ये सारा पालना का कार्य हुआ। मैं बीच में एक बात बताना भूल गई कि बाबा को जब दिव्य साक्षात्कार हुए उसके बाद शिव बाबा की जो प्रवेशता हुई उस दिन का नजारा बाबा की पुत्र वधू ने देखा। बाबा के घर में कोई गुरु का सत्संग चल रहा था और बाबा कभी सत्संग के बीच उठते नहीं थे, पर इन दिव्य साक्षात्कारों के बाद बाबा का मन उपराम हो गया। तो एक दिन सत्संग के बीच बाबा उठकर धीमी चाल से अपने कमरे में वापस गए तो उसकी पुत्र वधू को संकल्प चला कि बाबा कभी सत्संग के बीच उठते नहीं हैं, आज बाबा उठ के गए, क्या तबीयत ठीक नहीं है, क्या बात है। तो वो पीछे पीछे गई और जब देखा बाबा कमरे में एक आसन पर बैठे थे और पूरे लाइट स्वरूप थे, पला जो पलथी मारकर बैठे थे वहां से धीरे 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 पूरा बाबा का व्यक्तित्व एकदम गोल्डन रेड प्रकाशमय काया हो गई और ज्योति बिंदु प्रवेश हुआ और बाबा के मुख से ये उच्चारण हुआ कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप शिव हूं शिव हूं। बाबा के मुखारविंद से ये धीमी आवाज में महावाक्य उच्चारण हुए। शिव बाबा की इस अलौकिक प्रवेशता की साक्षी बाबा की पुत्र वधू राधिका, जो बाद में उनको अलौकिक नाम मिला दादी ब्रिजेंद्रा, जो हमारे बॉम्बे महाराष्ट्र स्टेट की हेड थी। तो इस प्रकार 14 वर्ष की साधना के बाद जब ये समर्पित भाई बहनें परिपक्व हुए तो बाबा ने विश्व सेवा के लक्ष्य से भारत में स्थानांतरित होने का आदेश दिया। बाबा ने सिंध से तीन चार बहनें और एक दो भाइयों का ऐसे 5 का ग्रुप भारत में भेजा और उस समय कोई संपर्क नहीं थे भारत में, क्योंकि 14 वर्ष माना 1950 पार्टीशन हो गया था भारत पाकिस्तान का। बाबा जानते थे भविष्य विश्व सेवा का कार्य भारत से ही अनुकूल रहेगा, तो बाबा ने इस ग्रुप को भेजा। बाबा का एक भक्ति में गुरु था स्वामी गंगेश्वरानंद, जो अहमदाबाद में वेद मंदिर में रहते थे। तो बाबा ने वो ग्रुप अहमदाबाद में वेद मंदिर में गुरु के पास भेजा और उन्होंने को बताया कि कोई बड़े स्थान की हमें जरूरत है। तो स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने इन सबको गाइड किया कि आप माउंट आबू में जाइए, वहां राजस्थान के कई राजाओं के बड़े बड़े महल अब खाली पड़े हुए हैं, वो आपको बड़ी जगह वहां मिल सकती है। फिर तो 1950 पहली मई को ये 350-400 लोग पूरी स्टीमर भर के कराची बंदर से सामान जो ला सकते थे, बाबा ने अपने बंगले सब वहां छोड़ दिए। और जबकि वहां की गवर्नमेंट ने बहुत रिक्वेस्ट किया आप यहां रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारा पूरा सहयोग आपको रहेगा, पर बाबा को तो विश्व सेवा का लक्ष्य था, तो पूरा कारवां कराची बंदर से गुजरात के द्वारिका के पास ओखा बंदर पर आए और वहां से ट्रेन में फिर पूरी सेना आबू रोड में आई और यहां सबसे पहले राजस्थान के भरतपुर महाराजा की एक कोठी महल था वो किराए पर लिया, कुछ साल उसमें रहे। उसके बाद कोटा हाउस लिया कोटा के राजा का, धौलपुर हाउस लिया और लास्ट पोखरान के राजा का स्थान लिया जहां आज पांडव भवन है, जो इस विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है, ओरिजिनल हेडक्वार्टर कैंपस है वो माउंट आबू में नक्की लेक के पास, जिसे हम पांडव भवन कहते हैं। 10 एकड़ में बसा हुआ वो असली हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स है, सब वहां कर रहे। उस समय तो कोई सुविधा नहीं थी, धीरे धीरे बाद में सारे मकान बने हैं। और आप सोचो 350-400 लोगों को 14 साल तक बैठे बैठे खिलाया गया, पालना की गई, ज्ञान योग की शिक्षाएं दी गई। तो जब भारत आए तो बाबा ने फिर सेवा का आदेश दिया कि अब आप भारत के अलग अलग शहरों में जाओ और सेवा कार्य शुरू करो। आप सोचिए, 14 साल दुनिया से कट ऑफ रहे, भारत में आए, अकेले अकेले, कोई संपर्क नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई धन इतना नहीं, कोई साधन नहीं, पर निष्ठा, भगवान में निष्ठा, सत्य ज्ञान, परमात्मा के साथ का अनुभव, पवित्र जीवन, शुद्ध चरित्र, इस अलौकिक संपदा के साथ ये बहनें जो आज दादियां हैं, उनको वो अलग अलग शहरों में जाके सेवा शुरू की और इस प्रकार सेवा केंद्र खुलते गए। शुरुआत दिल्ली जमुना के कंठे पर बैठकर बहनों ने कार्यारंभ किया, फिर पंजाब में गुरुदासपुर पता नहीं कोई स्थान पर शुरू किया, बहुत बहुत, क्योंकि एक साथ अमृतसर से माना पंजाब पूरे एरिया से लगभग एक साथ उस समय स्टार्टिंग में 1952 से 1960 के बीच में 100 से भी अधिक कुमारियों ने जीवन समर्पित किया। बाबा उनको पंजाब के शेर कहते थे कि ये पंजाब की शेरनियां हैं, सत्य ज्ञान की गजगोर करेगी। बहुत विरोध, बहुत विघ्न, शुरुआत में पंजाब में भी बहुत विघ्न आए, पर सत्य तो सत्य ही रहता है। कार्य बाबा का बढ़ता गया, सेवा बढ़ती गई, अनेक शहरों में केंद्र खुलते गए, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे, इस प्रकार भारत के अलग अलग शहरों में बाबा का कार्य शुरू हुआ। परिवार के परिवार आने लगे और दिन प्रतिदिन ये बहनों का काफिला बढ़ता गया। स्वागत सत्र में मैंने बताया था कि आज इस विश्वविद्यालय के विश्व के पांचों ही खंडों में 140 से भी अधिक देशों में 9000 से अधिक सेवा केंद्र और 25000 से भी अधिक गांवों में क्लासेस चलते हैं। हमारे जैसी लगभग 18000 बहनों ने अपना जीवन इसमें समर्पित किया है। हमें यहाँ कोई बंधन नहीं है, हम अपने माँ बाप के पास जा सकते हैं, माँ बाप हमारे पास आ सकते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं अपने नियम मर्यादाओं में रहते हैं। दुनिया की सेवा हम करते हैं तो माता पिता से क्यों नहीं मिलेंगे, परिवार से क्यों नहीं मिलेंगे। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य में रहना है, हमें कहीं भी फंसना नहीं है, अपने ध्येय में रहना है, हमें कोई मना नहीं। लगभग 3-4 हजार जितने अब तो समर्पित भाई भी हैं मेजोरिटी अनमैरिड भाई हैं, कुछ परिवार भी हैं जिनकी राजी खुशी से पूरे परिवार भी स्वाहा हुए, और इस प्रकार समाज की रूहानी सेवा का कार्य आज विश्वव्यापी हुआ है। ये बाबा का भतीजा, उनके जो चाचा थे उनका बेटा, बाबा के प्रति इतना समर्पित था कि बाबा समर्पित हुए उसके साथ ये विश्व किशोर नाम इनका था, पूरा बाबा का कारोबार संभालते थे। अनेक दादियां ऐसे लीडर्स बाबा ने तैयार किए जो सच्चाई, सफाई, वफादारी, आज्ञाकारिता, पवित्रता, सत्यता से बाबा के साथी बने। ये बॉम्बे का दृश्य है, बाबा के पीछे हाथ में प्रसाद की थाली लिए हुए दादी प्रकाशमणि जी हैं, जो मम्मा के बाद, क्योंकि मम्मा ने 1965 में अपना शरीर छोड़ा, फिर दादी प्रकाशमणि जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने। बाबा ने फाउंडेशन पक्का किया, लीडर्स तैयार किए। बाबा जब अव्यक्त हुए 150 से भी कम केंद्र थे, पर दादी प्रकाशमणि जी के नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय के हजारों सेवा केंद्र हुए। दादी बहुत ही लगन से सेवा कार्य करती थी। 1969 में बाबा अव्यक्त हो गए। उस समय लोगों को बहुत शंका हुई कि अब हम देखते हैं ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कैसे चलता है, पर वास्तव में ये विद्यालय कोई व्यक्ति पर आधारित नहीं है, ये स्वयं परमात्मा का दिव्य कार्य है। इसलिए बाबा के जाने के बाद भी इसमें कोई प्रशासन में प्रॉब्लम नहीं हुआ। मम्मा के बाद दादी प्रकाशमणि जी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुई, जिसने पूरे भारत में प्रचार किया, विकास किया, व्याप किया। दादी मनमोहिनी जी, जिसको दीदी जी कहते थे, बड़ी दीदी, ये एडिशनल हेड हुई बाबा के बाद। बहुत योग शक्ति, पैनी नजर, परख शक्ति, बहुत नियम मर्यादा में दृढ़ दादी और दीदी सालों तक एज इट इज, जैसे बाबा ने किया ऐसे इस यज्ञ को चलाती रही। दीदी के 83 में दीदी ने शरीर छोड़ा, दादी जानकी जी एडिशनल हेड बने, और दादी जानकी जी 74 में विदेश गई, लंदन में पहला केंद्र खुला, और ये वो दादी जानकी जी है जिसने विश्व के 140 देशों में भारत की आध्यात्मिकता फैलाई, जो इतना पढ़ी भी नहीं, पर वहां के अलग अलग धर्म, भाषा, अलग अलग संस्कृति वाले लोगों को सत्य आध्यात्मिकता के प्रति निश्चय बुद्धि बनाया, आपको पता रहे पांचों ही कॉन्टिनेंट की जो पांच हेड हमारी बड़ी बहनें दादियों के नेक्स्ट जो दूसरा ग्रुप तैयार हुआ और उसके बाद दूसरी और 20-25 बहनें, बस इतनी बहनें भारत से गई, बाकी आज विदेश के 140 देशों में 500 से भी अधिक केंद्र है और वहां के ही भाई बहनों को योग्य बनाकर तैयार कर वो ही उन केंद्रों का संचालन भी करते हैं। कभी आप यहां अक्टूबर मास में आएंगे या फेब्रुआरी मार्च में आएंगे तो यहां फुल फॉरेनर्स होते हैं। उनकी एन्युअल रीजियनल कोऑर्डिनेटर्स, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, सेंटर कोऑर्डिनेटर्स की एनुअल मीटिंग होती है और काफी उनका ग्रुप्स आता है। आप वंडर खाएंगे, उसमें कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पीला है, कोई लाल है, अलग अलग भाषा, अलग अलग चेहरे। आप देखते हैं यहां ऊपर ये ट्रांसलेशन के बूथ बने हैं। क्लास हिंदी में होता है, फिर एक मेन ट्रांसलेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है और उससे हर देश की भाषा के ट्रांसलेटर अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं और जहां आप बैठे हैं उनको हेडफोन्स दिए जाते हैं जिसको जो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन चाहिए। पर पूरे निश्चय से भारत की आध्यात्मिकता को अपनाए हुए भाई बहने आते हैं। आप समझ सकेंगे उनको देखकर कि हमें जबरदस्ती से किसी को धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पास सत्य ईश्वरीय ज्ञान है और हमारा श्रेष्ठ जीवन है तो वो क्रिश्चियन आते हैं, बौद्धिस्ट आते हैं, मुस्लिम भाई बहने आते हैं, ज्यूइज आते हैं, अफ्रीका के अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, अपने आप अपने जीवन का परिवर्तन करते उनको आप देखेंगे वो एक चोटी बनाते हमारी तरह, हिंदी भाषा सीखते हैं, अपना सात्विक भोजन बनाना सीखते हैं यहां आकर, उनके जीवन में नेचुरल परिवर्तन होता है। तो ये दादी जानकी जी इस साल 99 वर्ष पूरा कर 100वें वर्ष में प्रवेश हुई। अभी वो हेड है इस विद्यालय की। 2007 25 अगस्त के दिन दादी प्रकाशमणि जी अव्यक्त हुए, उसके बाद दादी जानकी जी इस विद्यालय की हेड है। दादी जी इस आयु में अभी लंदन गई है, 22-23 अगस्त वापस आएंगे। ये एक बहुत विरल अद्वितीय आत्मा है दादी हृदय मोहिनी जी, जिसके द्वारा हमें शिव बाबा के लेटेस्ट मैसेज मिलते हैं जिसको हम अव्यक्ति महावाक्य कहते हैं। दादी हृदय मोहिनी जी ट्रांस मैसेंजर है, वे ध्यान में जाते हैं और इनके द्वारा बाबा के लेटेस्ट महावाक्य, डायरेक्शंस, सिग्नल्स हमें मिलते हैं कि अब हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अभी दादी जी दिल्ली में हैं, वो भी कुछ समय के बाद यहाँ आएंगे। ये कौन है चेहरे से बताइए? ब्रह्मा बाबा के लौकिक पुत्री निर्मल शांता दादी जी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा और आसाम के आगे जो 7 स्टेट्स है और नेपाल, इन सब की वो हेड थी। उनको सदा ये नशा, गर्व रहता था कि मुझे 3 in 1 मिले हैं। ब्रह्मा बाबा मेरा लौकिक पिता है, अलौकिक पिता है और उसके ही तन में परम पिता परमात्मा शिव आते हैं, मुझे 1 में 3 मिले। बहुत रॉयल संस्कार वाली थी दादी चंद्रमणि जी, पंजाब की हेड थी पंजाब जोन। दादी मनोहर इंदिरा जी हरियाणा की मेजोरिटी सेवा और वहां की लगभग सभी केंद्रों की इंचार्ज मुख्य बहने दादी मनोहर इंदिरा की तैयार की हुई लीडर। दादी ने बहुत सेवा की वहां। फिर हेडक्वार्टर में आई 69 के बाद और ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर थी। 2008 में आपने अपना शरीर छोड़ा। दादी शांतामणि जी यूपी स्टेट में सेवा की और 69 के बाद हेडक्वार्टर में स्थायी हुई, शांतिवन परिसर की डायरेक्टर थी। ये वर्तमान समय दादी रत्न मोहिनी जी जो आपसे मिले, इस विद्यालय के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, आप उनसे मिले ना? दादी जी आज बॉम्बे गए। ये हमारी त्रिमूर्ति दादियां, ब्रह्मा के 3 मुख जिन्होंने सारे विश्व में भगवान को प्रसिद्ध किया, विश्वविद्यालय को फैलाया। ये दादी ब्रिजेंद्रा ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्र वधु, जिसने शिव परमात्मा के दिव्य प्रवेश को देखा, अनुभव किया, महाराष्ट्र की हेड थी। दादी गंगे यूपी स्टेट की हेड थी। सबसे ज्यादा सितम इसने सहन किए जब ये विद्यालय हैदराबाद में शुरू हुआ, पर इसकी लगन इतनी रही कि आखिर माँ बाप को सहमत होना पड़ा और उनको सम्मति पत्र दिया और वो यज्ञ में आकर ही रही और अपना जीवन सफल किया। उसका नाम, क्योंकि उसने कानपुर से सेवा शुरू की, कुंभ मेले में पहला निमंत्रण मिला कानपुर सेवा के लिए, इसलिए दादी को बाबा गंगे दादी कहती थी। ज्ञान गंगा बनकर यूपी में उसने सेवा की। ये दादी हृदय पुष्पा चंद्रमणि दादी जी की लौकिक बहन, आप विचार करिए, एक सिंधी बहन जो साउथ इंडिया में गई कर्नाटक में और उसने वहां की भाषा भी नहीं जानती, पर उसने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में सेवा शुरू की और फैलाई, क्योंकि उनका योग इतना शक्तिशाली था, लोगों को उनसे बहुत साक्षात्कार होते थे। आज साउथ इंडिया में बहुत ही सबसे ज्यादा गांव-गांव में इसका फैलावा है। ये दो कुमार भाई शुरू में सिंध हैदराबाद में समर्पित हुए थे, जीवन के अंत तक। एक तरफ विश्व रतन दादा, जिसके बाल सफेद दिखाए हैं, और दूसरे उन्होंने पूरा यज्ञ का फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाला, अकाउंट, और दूसरे चंद्रहास दादा जो कंस्ट्रक्शन को संभालते। और भारत का सबसे पहला अनन्य रत्न भ्राता जगदीश चंद्र जी, जिन्होंने इस विद्यालय का पूरा ही साहित्य लिखा, भगवान के सद्ज्ञान को वाणी दी, बाबा उसको संजय कहते थे, क्योंकि भगवान के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में पूरा साहित्य इन्होंने लिखा। अभी इस विद्यालय के हमारे मुख्य तीन भाई हैं, भ्राता निर्वैर जी जो इस विद्यालय के हेडक्वार्टर में यहां ही हैं, थोड़ी तबीयत ठीक ना होने के कारण वो मिल नहीं सकते हैं, पर वो इस विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल है और पूरा ही हेडक्वार्टर के काफी कारोबार को, एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये जितनी हॉस्पिटल आप यहां देखते हैं इनके नेतृत्व में कार्य करती हैं। ये भ्राता रमेश शाह बहुत ही उदाहरण मूर्त बॉम्बे के हैं, इस विद्यालय में समर्पित है, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस एंड लीगल डिपार्टमेंट को देखते हैं। और ये हमारे भ्राता ब्रिज मोहन जी जो दिल्ली में रहते हैं, वर्तमान समय पूरा गवर्नमेंट से संबंधित कारोबार और काफी साहित्य विभाग और दिल्ली कैपिटल की सेवाओं को आप देखते हैं, तो वर्तमान समय भी यह विश्वविद्यालय वही पिता परमात्मा के आदेश पर कार्य कर रहा है। और इस विद्यालय में आने वाले सभी भाई बहने अपने मन वचन कर्म तन मन धन से मददगार रहते हैं, इसलिए इस विद्यालय में कभी भी कोई फाइनेंस प्रॉब्लम होता ही नहीं। एक मिनट शिव बाबा की याद में बैठेंगे, हमें हर कार्य शिव बाबा की याद से शुरू करना है और शिव बाबा की याद से ही संपन्न करना है। एक मिनट साइलेंस। तीनों पिता को याद करेंगे और उनका शुक्रिया मानेंगे कि लौकिक पिता ने जीवन दिया, परम पिता ने मुझ आत्मा को पावन बनाया और ब्रह्मा अलौकिक पिता ने मुझे श्रेष्ठ संस्कार दिए।